ओम शांति ओम शांति। आज वर्ष 2024 का लास्ट दिन है। आज हम 2024 में हैं, कल नए वर्ष 2025 में हम प्रवेश कर जाएंगे। नए वर्ष के लिए नई शुभकामनाएं प्यारे बाबा ने भी उस दिन आवेक्त मुरली में त्रिमूर्ति बधाइयां दी। नए जीवन, नया वर्ष, नया युग। ब्राह्मणों के लिए हर सेकंड नया ही नया है। बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे एक सेकंड ना मिले दूसरे से, इसलिए हर नया सेकंड हो, नई बातें हो, नया पुरुषार्थ हो, इसलिए पहले से ही इन एडवांस नए वर्ष नए युग के लिए ब्राह्मणों को बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और जैसे कि कब कोई वर्ष पूरा होने को होता है या कोई कार्य करते हैं लास्ट तक पहुंचने पर होते हैं, तो उस समय ध्यान देते जल्दी जल्दी पूरा करो, अभी जल्दी जल्दी पूरा करो, समय हो रहा है। इस तरह से बाबा भी कहते हैं कि संगम का समय तो फास्ट गति से जा ही रहा है, लेकिन इस वर्ष का आज का जो लास्ट का दिन है उसके लिए हमें खुद को ही खुद की चेकिंग करनी है, खुद ही क्या करना है, क्या हमारा वर्ष रहा, कितनी प्राप्तियां हुई और कितने बहुत कुछ अनुभव किए, और नए वर्ष के लिए हमें क्या करना है, खुद ही सबको ध्यान देना है। और आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें की हैं। बाबा ने बच्चों को आज वरदान दिया, जीते रहो जागते रहो। मुरली में लास्ट में बाबा ने कहा जीते रहो और जागते रहो। ज्ञान मार्ग में जीते रहना है, जागते रहना मीन्स अलर्ट रहना है। जब कोई सो जाता है तो अलबेला हो जाता है, तो उसका ध्यान नहीं रहता है। तो बाबा ने भी कहा जीते रहो और जागते रहो। आज तो हमें वैसे भी डबल फायदा है, क्योंकि आज इस साल का अंतिम दिन है और अव्यक्त बाप दादा से मिलने का भी दिन है। अव्यक्त बाप दादा भी हमें कितने वरदानों से भरपूर करेंगे। तो आज भी प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर बच्चों को बहुत ध्यान भी खिंचवाया है। एक तो वरदान दिया जीते रहो और जागते रहो। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को ध्यान देना है कि ना कोई बुरा सुनना है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, कोई भी कुछ ऐसी वैसी बातें हैं उसको ध्यान नहीं देना है, उसको सुनना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होके रहना है। दिल तख्त अगर नशीन बनना है, दिल तख्त नशीन वही बच्चे बन सकते हैं जो बाप को अपना सच्चा चार्ट देते हैं। जिसमें बाबा ने कहा कि अगर कोई गलती हो जाती है, अगर सर्जन को नहीं बताएंगे तो बीमारी कैसे दूर होगी। इसलिए बाबा से भी हमको बिल्कुल सच्चा चार्ट रखना है और सच्चा होकर के चलना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर हो जाता है। पढ़ाई में भी बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर हो जाता है। आज का प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? इसका उत्तर है, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। बाप को सब कुछ सुनाओ, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपनी कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। कई बच्चे बाबा से कहते ना, बाबा कृपा करो, आशीर्वाद दो। बाबा के पास जब ऐसे बच्चे आते थे ना तो बाबा कहते थे, देखो भगत आ गया है। जो बच्चे होंगे वो कृपा और आशीर्वाद नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा, अपने ऊपर कृपा और आशीर्वाद दो तरीके से कर सकते हैं, एक पढ़ाई से और दूसरा बाप से सच्चा होकर के रहने से। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते। जब दुख कहते हैं ना तो उसमें सभी दुख में आ जाते। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते। मां बता रहे, जब सतयुग है सुख है तो सभी सुखी हैं, कलयुग में दुख है तो सभी दुखी हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? बाप पूछते, कौन सी जगह जहाँ पुण्य है वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग और एक है कलयुग। सतयुग में पुण्य सुख और कलयुग में दुख और पाप। तो बाबा कहते हैं, ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं, जो सुख देता है वह दुख भी देता है। बाबा कहते, भक्ति में रुका ना, भगवान ही सुख भी देता है दुख भी देता है। तो बाबा कहते, ऐसा नहीं है कि जो सुख देता है वो दुख भी देता है। सुख देने वाला बाप है और दुख देने वाला कौन है वो भी बाबा ने बताया। ऐसा नहीं कि जो सुख देता है वह दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की FG हर वर्ष जलाते हैं। दुख हमेशा के लिए खलास हो जाता है। बच्चे जानते हैं, जब उसका राज्य पूरा होता है तो हमेशा के लिए दुख खलास हो जाता है। पांच विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में क्या है? बाबा कहते, तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाए। यहाँ आते हैं तो किस लिए? बाबा के पास जाना है, बाबा के घर जाना है, बाबा से मिलना है। तो बाबा ने कहा, एक तो यहाँ आते हुए बुद्धि में रहे और सारा समय ये याद रहे कि हम सबको बाबा के पास अपने घर जाना है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम अब बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना कि रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहते हैं? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। कई समझते लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। वास्को डी गामा निकला था भारत की खोज के लिए, भारत में आने के लिए, और उसका स्टीमर ऐसा था कि वो कहाँ से काम घूम गया और जाकर के वो अमेरिका पहुंचा। इस प्रकार से उसने अमेरिका की खोज निकाली। तो बाबा कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। पहले जमाने में क्या चलते, स्टीमर चलते थे, बोट चलते थे, या तो पैदल जाते थे। इतने साधन तो नहीं थे। बाबा हमेशा बताती एरोप्लेन आदि भी को निकले हुए कितना टाइम हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ है। ट्रेन भी स्टीम पे चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहती हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना स्थापना पालना और विनाश। बाबा हर चीज की करेक्शन करते ज्ञान युक्त। कॉमन भाषा में तो बोल देते हैं स्थापना पालना और विनाश, लेकिन ज्ञान युक्त के हिसाब से बाबा कहते स्थापना विनाश और पालना। स्थापना मीन्स आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, और पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना पालना विनाश, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना, ये अक्षर राइट है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। सत्युग त्रेता में विष्णु की पालना है और द्वापुर से लेकर रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी भिखारी पतित बनने की पालना है जिसमें सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े, बाबा को गाली दिया तमो प्रधान बने, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया तो क्या हालत हो गई। तो बाबा को कहना पड़ता है देखो क्या बन पड़े हैं, ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ इतना सहज है, सिर्फ अल्लाह की बात है। बाबा कहते हैं इतना सहज है, केवल बाप को याद करना है, सिर्फ अल्लाह की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। हर धर्म में सभी यही शिक्षा देते हैं कि प्रातः उठते ही भगवान को याद करो, चाहे बाबा के नाम अलग अलग हैं। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम भी कहेंगे बाप को याद करो। तुम बच्चे कहेंगे बाबा को याद करो, वो कहेंगे अल्लाह को याद करो, दुनिया वाले कहेंगे ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो। तुम भी कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्यों मीठा है? क्योंकि बाबा याद करते हैं तो वर्षा भी याद आता है और प्राप्ति भी आती है, पालना भी याद आती है। तो बाबा कहते बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। किसी को भी को ना, वो कहेगा वो मेरा पिता है, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ क्योंकि मेरे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी। कहेंगे भगवान कहेंगे तब नहीं कहेंगे कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। इसलिए बाबा कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। सभी अक्षर भारत में हैं, पर मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह सिर्फ अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी कहते हैं। ये सभी अक्षर भारत में हैं। परम पिता परमात्मा कहने से शिवलिंग भी समझ लेते हैं, शिवलिंग भी याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। अब आप बता रहे हर एक लोग कैसे कैसे भगवान को याद कहते हैं, कौन करते हैं, कौन किस में रूप में करते हैं। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर बित्तर को ही भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आएगा। शिवलिंग बनाते ना, बड़ा बड़ा बनाते पत्थर का, तो भगवान को याद करते तो पत्थर भी सामने आता है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं, पत्थर कहाँ से आता है। अब आप कहते देखो शिवलिंग कहाँ से बनता है, पत्थर कहाँ से आता है। पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। अब कहते हैं समुद्र से शिवलिंग निकला, वो पानी आता रहता है, झरने आते रहते, घिसते घिसते वो शिवलिंग बन जाता है। अब देवताओं और शिवलिंग में अंतर बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा पहाड़ों के झरने से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती है। खर्चा पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आंख आदि कितना सुंदर बनाते। देवियों की मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों को बनाने के लिए, पत्थरों से बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने हथौड़े मारते, कितने चेने मारते, तब जाकर के वो बना पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे नेचुरल निशान पड़ जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती है। पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं, खर्चा भी बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं। शिवलिंग तो वैसे नेचुरल आ जाता है, कहाँ का अभी तो बनाते हैं, लेकिन तो भी इतना खर्चा नहीं होता। कोई नाक मुंह कान तो शिव बाबा का बनाना नहीं, देवताओं का फेस बनाएंगे, आंखें बनाएंगे, कान बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, हाथ बनाएंगे। देशी बाबा का तो केवल एक गोल पत्थर रखेंगे, उसमें तीन लाइनें डाल देते हैं, बिंदी लगा देते ऊपर, उसमें तो कोई खर्चा होता नहीं है। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चा आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे। वो पत्थर से बनाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते अभी तुम बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। सतयुग में तो कौन किसकी पूजा करेगा, द्वापर से शुरू होती है ना। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां ना कोई पुजारी होते और ना कोई पत्थर की मूर्ति होती। बाबा कई बार कहते हैं सतयुग में क्या क्या नहीं होता है, कभी कहेंगे हॉस्पिटल नहीं है, वकील नहीं है। ये आज बाबा कहते ना कोई पूजा होती है, ना कोई पुजारी होता है, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती है। वहां ना कोई पुजारी होते, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं है। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों में रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी फिर से वही रिपीट होती है। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे कि पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिलता है ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबर वार है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान एक है परंतु उठाने वाले नंबर वार है। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की माला, रुद्रमाला आत्माओं की, तो आत्मा रूप में भाई भाई। एक है ब्रदर्स की और दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर के। जब शरीर में आते तो भाई बहन हो गए। ये तो बुद्धि में आता है। हम आत्मा बहुत छोटी छोटी बिंदी मौफिक हैं, गायन भी है, ब्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझती हो हम आत्मा चैतन्य हैं, एक छोटे सितारे मिशन है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, आप देखते हैं बच्चा पैदा हुआ तो कितना छोटा सा, फिर धीरे धीरे बढ़ता, बढ़ते बढ़ते अंत में देखो तो कितना विशाल काया बन जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य हैं, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। मनुष्य को कैसे याद करते, उसको शरीर के द्वारा ही याद करते हैं। तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं, इस शरीर को ही सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही अच्छा और बुरा होने के कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। सच्चु में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, वहां तो स्वतः ही आत्म अभिमानी है, वहां तो कहने की दरकार ही नहीं है, वहां पर शरीर पे भी कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो बाबा कहते हैं सच्चु में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान अभी तुम्हें ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन चुकी है। पतित होने के कारण जो काम करते हैं वह सभी उल्टा हो जाता। इतने प्लान करेंगे, अच्छे काम करने लगते हैं, अच्छी बातें करते, कई बार देखा लोग अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं उसी में कुछ ना कुछ देह भान के कारण आपस में लड़ जाते, हर काम उल्टा ही होता जाता है क्योंकि पतित है। पतित होने के कारण जो काम करते हैं वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप सुलटा काम कराते, माया उल्टा काम कराते। कभी कभी बाबा कहते ना माया उल्टा काम कराते कराते सबको क्या बना देती है, उल्लू जैसा बना देती है। बाप सुलटा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है कौन सा, बाप को सर्वव्यापी कहना। बाबा को ठिक्कर भीतर में डाल दिया, पहला उल्टा काम ये किया, बाकी सब उल्टे काम हो गए। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है, आत्मा जब पावन है तो शरीर के साथ पूजा होती है, आत्मा तो जल नहीं सकती ना। तो बाबा कहते शरीर को जलाया जाता, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है। आत्मा बिगर शरीर दो चार दिन भी नहीं रख सकते। जब भी कोई शरीर छोड़ता है ना, कहते जल्दी जल्दी इसका संस्कार करो, कोई इमरजेंसी होगी तो एक दो दिन रखते हैं, नहीं तो रखते नहीं है। तो जब शरीर आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है, कितना भी सुंदर हो लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर बिगड़ शरीर दो चार दिन भी नहीं रख सकते हैं, कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं। कहाँ का ऐसे करते ना, दफनाते हैं, दवाइयां लगा देते हैं, परंतु फायदा क्या है। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उनका जैसे कि मंदिर बना हुआ है, जाते हैं लोग वहां पर अपनी मनोकामना लेके जाते हैं, वहां कहानी सुनाते हैं, शरीर तो दिखाते हैं उसके पांव दिखाते हैं, और बाबा ने बताया उसके पांव को टच करते हैं तो कहते हैं बीमारी दूर हो जाती है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता है, लेकिन भावना का भाड़ा उनको मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं उनका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उनका जैसे कि मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कि कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता है। बाबा बता रहे पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा है, भावना है, संकल्प है, संकल्प की सिद्धि हो जाती है। वैसे भी कोई संकल्प करते हैं तो उसी अनुसार से अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं, कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता है, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा है। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। अब मंदिर में जाते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं, तो सचमुच भावना का भाड़ा मिलता है ना। तो बाबा कहते ये भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। अभी दूसरा राज, एक है भावना का भाड़ा और दूसरा है निश्चय बुद्धि होने से फायदा होता है। तो बाबा भी कहते यहाँ क्या करना है, जो निश्चय बुद्धि है उनको हर समय प्राप्ति ही प्राप्ति है, जहाँ संशय आया तो फिर कभी प्राप्ति हो रही है तो उसका अनुभव नहीं हो पाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा है, बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर वहां जाए, अगर वो ठीक हो जाते हैं, इतनी सारी दुनिया में लोग कितने बीमार हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो सब के सब जाएं, अगर ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहां जाएं और मेला ही लग जाए, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि मेला लग जाए। यहाँ बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं आते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। बाबा कहते देखो बाबा के पास बाबा आए हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, सबको थोड़ी निश्चय है, और तो भी ढेर आ जाएंगे तो भी इतनी जगह नहीं। अभी भी बाबा मिलन के टाइम देखते हैं, उनको हम नंबर देते हैं कि इस ग्रुप में इतने आए, इस ग्रुप में इतने आए, नहीं तो खुला छोड़ दो तो कितने आ जाएंगे। फॉरेनर्स का भी ऐसे नंबर देते हैं कि हर ग्रुप में नंबर के अनुसार आना है, ताकि उनको रहने की व्यवस्था हर प्रकार की ठीक तरह से व्यवस्था मिले। तो बाबा कहते अगर सारे आ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो बाबा कहते हैं ढेर के ढेर वहां जाए, मेला लग जाए, बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते हैं, ढेर होने की जगह भी नहीं है। अभी देखते ना कितना जगह बनाते जा रहे हैं, शांतिवन का विशाल रूप बनता ही जा रहा है, बनाते जाते हैं, जितना बनाते हो उतनी जगह कम, हर एक को उतनी जगह मिलेगी जितनी पहले ही मिलती थी। बाबा के बच्चे भी बढ़ते जाते और बढ़ने भी हैं, बाबा के पास आना है और बाबा ने कहा सबको आकर के बाप के घर लाभ लेना है। तो बाबा बता रहे हैं ढेर के ढेर वहां जाए, मेला लग जाए, बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते हैं, ढेर होने की जगह ही नहीं है। है जगह, सारा दिन कहेंगे पांडव वन रहना। अब यहाँ जगह हो तो तब रखिए ना, फिर भी बाबा अनुभव कराते हैं, आते हैं, रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे अनुभव कराते रहते हैं, तो बाबा इतने कहते हैं इतने ढेर सारे को कैसे रख सकेंगे। तो बाबा कहते ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय होता है तो विनाश हो जाता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ढेर बाबा के बच्चे बनेंगे, एक तरफ उनको निश्चय होगा, बाबा का ज्ञान सुनेंगे, बाबा के बनेंगे और साथ ही साथ परिवर्तन भी शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। ये सृष्टि कब चेंज होती है? जब जड़ जड़ी भूत हो जाती है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वे आएंगे, कौन आएंगे पहले, कौन आएंगे बताओ, जो आएंगे हाथ तो खड़ा कर दो सारे। बाबा कहते पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में आना, श्री कृष्ण के साथ आएंगे। आप सब तो श्री कृष्ण की राजधानी में आने वाले हैं, इसलिए पहले नंबर में आएंगे। बाबा कहते हैं पहले वे आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना। पहले नंबर में श्री कृष्ण की भी तो राजधानी होगी ना, अकेला थोड़ी बैठा रहेगा, और उसके सखा सखी सब कुछ होंगे, रॉयल फैमिली होगी, प्रिंस प्रिंसेस होंगे, राजा महाराजा होंगे, सब होंगे ना। तो श्री बाबा कहते हैं पहले वे आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। नंबर वन आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। वैसे भी कोई ड्रामा होता है, पहले दो एक्टर आते, तीन आता, धीरे धीरे एक एक बढ़ता जाता, जैसे जैसे रोल बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबर वन माला अनुसार ही आते हैं। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? सारे पाठधारी इकट्ठे हो जाए तो पाठ तो बचेगा नहीं, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर जिसका रोल होगा वो आएगा। तो बाबा कहते सभी पाठधारी इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना, पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, नहीं तो खेल ही बिगड़ जाए। सारे एक्टर्स को पहले खड़ा कर दो तो क्या होगा, खेल ही समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती है। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। कौन सी बात याद रहनी चाहिए? ये ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट भी एक्यूरेट है, ये खेल बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सभी सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि से पढ़ने से कोई कमाई नहीं होती है। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते, भक्ति करते हैं, भावना होती है, कुछ न कुछ गुण होते हैं, कर्म भी अच्छे करते हैं, लेकिन कमाई तो नहीं होती ना। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं, ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। ग्रंथ में कहा ना निर्विकारी बनो, ये कहो, लेकिन सभी थोड़ी होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं कि वहाँ जन्म कैसे होगा, लोग पूछते हैं ना सतयुग में जन्म कैसे होगा, उनको बताते योग बल से, वो समझते ही नहीं है। कई बार कई बच्चे बाबा से पूछते थे बाबा ऐसे कैसे होगा, बाबा कहते थे वहाँ जाओगे ना वहाँ जाके देख लेना, वो तो देखना ही है, लेकिन योग बल की जो महिमा है वो इतनी महिमा है, इतना उसका विशेष है, तो उसके लिए बाबा कहते वहाँ तो योग बल से पैदा होते, भ्रष्टाचार है ही नहीं। तुम बच्चों से कहीं पूछते वहां जन्म कैसे होगा, बोलो वहां तो पांच विकार है ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, पहले ही साक्षात्कार होता है। बाबा ने पहले भी मुरली में बताया था, जब श्री कृष्ण जन्म लीला माला होता है चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है, माँ को पता पड़ जाता है कि आने वाला है, तो बाबा कहते वहां भी माँ को साक्षात्कार हो जाता है, यहाँ पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहां तो विकार की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती। अब कहाँ सच्चियों की बात बाबा बता रहे, फिर बाबा कह रहे यहाँ के बच्चे भी कैसे हैं, बच्चे मीन्स बाबा के बच्चे, यहाँ तो बच्चों को माया भी गिरा देती है, कोई कोई तो बाप को आकर सुलाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा हमेशा मुरली के अंदर बताते हैं कि अज्ञानी जिसने किया उसको 100 गुना दंड नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी समझदार करता है तो उसको जो सजा मिलती है ज्यादा मिलती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए, डरो नहीं घबराओ नहीं, बाबा को झट बता दो, तो बाप तो बच्चों को समझाते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है, कितना बड़ा वैद है, वैद भी है सर्जन भी है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे, जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, बाप साथ है सामने है, संगम युग के अंदर बाबा हम सबके साथ है, तो बाबा कहते जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, जब तक संगम युग है तब से बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, जो छिपाते हैं कई छिपाते हैं तो बाप के दिल को नहीं जीत सकते। अब दिल तखत नशीन बनना है तो बाप से सदा सच्चा रहना है, तो बाबा ने बता दिया जो छिपाते हैं वह बाप के दिल को जीत नहीं सकते, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, स्कूल में आएंगे ही नहीं तो करेक्टर्स कैसे सुधरेंगे, इस समय सबके करेक्टर्स खराब हैं, विकार ही पहले नंबर का खराब करेक्टर्स है, इसलिए बाप कहती हैं बच्चों काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था, गीता में बताते हैं काम महाशत्रु, सुनते रहते वर्णन रहते वर्णन करते पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसको जीतना कैसे वो तो नहीं जानते ना, तो बाबा कहते हैं आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी, सुनते थे प्रैक्टिकल में तो नहीं करते थे ना, अब बाप डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनाते हैं, अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि हम क्या क्या करते थे। ब्रह्मा बाबा भी अपनी कहानी सुनाते ना कि मैंने भक्ति में क्या किया क्या नहीं करता था, बाबा तो भक्ति के अंदर इतने एक्यूरेट और बिल्कुल एक्यूरेट करते थे, बहुत करते थे, तो बाबा खुद भी हंसते थे कहते देखो ना मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या क्या किया, अब तो बाबा ने ज्ञान दिया कि हम क्या बनने वाले हैं, तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि हम क्या क्या करते थे। अभी बाबा शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा आशीर्वाद की बात नहीं होती, तो बाबा के सामने कोई भी कहता था ना कृपा करो, बाबा कहते कृपा कैसे अपने ऊपर आप पे करो, फिर कई ऐसे होते भगत होते अभी भी होते कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रख दो, अरे हाथ तो रखने से क्या होगा, ठीक है हाथ रख दिया लेकिन अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, तो बाबा कहते हैं इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं होती है, खुद पर खुद ही दया कृपा व आशीर्वाद करनी, खुद पर खुद ही दया कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं, कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते। कहां बाबा के दिल तक नशीन बनना, कहां माया के पास पहुंच जाना। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर एक बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते, जैसे उन स्कूलों में अलग अलग होगा, ट्यूशन रख लेते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, कई जो बच्चे होते हैं उनकी ट्यूशन रख देते हैं। यहाँ तो बाबा सबको एक जैसा, गरीब अमीर छोटा बड़ा सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। यहाँ बाप तो हर एक बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुहर बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि आज मेरे मन में प्रश्न था, मैं जैसे बैठा तो बाबा की मुरली चली, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो इसलिए बाबा कहते कभी कोई मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी ऐसी पॉइंट आ जाए जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे, जो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करे, जो हमारे को हल्का कर दे। तो मुरली में सर्व प्रकार के खजाने हैं, प्रश्नों का उत्तर भी है, शक्ति भी है, और सब प्रकार के हल्कापन भी हो जाता है, बाप की मदद भी मिलती है। इसलिए बाबा हमेशा पक्का कराते हैं कि कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं, फिर कोई समय ऐसी गुहर बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ भी छीछी बातें बोले तो क्या करना है, सुना अनसुना कर देना। बहुत हैं जो कुछ ना कुछ बातें सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। वो सोचेंगे फलाना आए तो मैं उसको सुनाऊं, वो अभी अंदर सोचते रहते फिर सुनाते रहते। सुनने वाले को भी इंटरेस्ट आ जाता है, वो सुनाते रहेंगे, एक बार सुना फिर बार बार सुनाते रहते। इसलिए बाबा कहते कोई कुछ भी बोले सुना अनसुना कर देना चाहिए। कोई कुछ भी छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल, सो नो सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान, अब ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान, दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करना है। ऊंच पद पाने के लिए मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बताते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते। बाबा ने कहा इवल बातों को अनसुना करना है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, बाप ने जो सुना है उसको भी भूल जाते। तो बाबा को कहना पड़ता, देखो करना क्या है, इवल बातों को याद कर लेंगे, बाबा की बातों को सुनते हुए भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वे क्या पद पाएंगे। बाबा को भी सोचना पड़ता है, जब ऐसे करेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, वे क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं, जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। माया तो चोट शरीर को मारती है ना, तो बाबा कहते जब तक शरीर ही नहीं है तो माया भी धक्के मारती रहेगी, कुछ न कुछ करती रहेगी, कहेगी उधर क्यों जाते, खींचती रहेगी। तो माया भी कम नहीं है, तो बाबा कहते शरीर ही बनेगी तो माया किसको मारेगी, मार ही नहीं सकती है। बाप कहती है जब तक शरीर नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते हैं तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, फिर भी बाप कहते हैं, अभी ध्यान से सुनना, फिर भी बाप कहते, कई ऐसे हैं श्रीमत का पालन नहीं करते, बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, फिर भी बाबा को बच्चों पे रहम आता है, बाबा फिर भी बच्चों को वरदान देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते और जागते रहो। आज का नए साल के लिए वरदान, सदा जीते और जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। जब तक संगम युग है जीना है, जब तक हम बाबा की हैं अलबेले नहीं होना है, जागते रहना है और सदा जागती ज्योत और नया ऊंच पद पाना है। फिर भी बाप कहते बच्चे सदा जीते और जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ में क्या कहेंगे, पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष की बोलो बधाई, बोलो तो सही। हाँ, पुराने वर्ष को विदाई देना है ना, आज आज विदाई का दिन है और कल तो बधाई का दिन है, बाबा से वरदान लेने का दिन है। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहला है, कोई भी उल्टी सुलटी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई भी उल्टी सुलटी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना। बाबा जो सुनाते हैं उसको अनसुना नहीं करना, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। अब नए वर्ष में सबको दुआएं देते जाना, कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहा है वहाँ राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहा है वहाँ राह मिल जाएगी। अब सुनेंगे आज का सोमान। आज है 31 तारीख। आज का साकाश देने की पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। सो मान है मैं मास्टर रचयिता हूँ। योग अभ्यास मैं आत्मा ब्रह्मा बाग समान शुभ चिंतक बन अपनी सर्व रचना को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सभी आत्माएं भरपूर होकर इष्ट देवों के गुणगान कर रहे हैं। धारणा सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखना। चिंतन मास्टर रचयिता के कर्तव्य क्या क्या है। आज का व्यक्ति शरण सुनेंगे। आज 31 तारीख है। आज का व्यक्ति शरण अब मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी और वरदानी बनो तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला है। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को दान देने वाले दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना है तब ही अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे व अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। अच्छा ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का दिन है। शांतिवन में भी बहुत से भाई बहने आए हैं और साथ साथ यहाँ भी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों को तो सदा निमंत्रण है। मधुबन निवासी भाई बहने जाएंगे। डबल विदेशी भाई बहने भी बाप दादा मिलन के लिए जाएंगे और बाकी जिनके पास अपनी गाड़ी का साधन है वो भी जा सकते हैं। नहीं तो ट्रांसमिशन या ओम शांति भवन में होता है वो भी सुनते हैं। अभी कई भाई बहने पार्टी के भाई बहने हैं जो मधुबन में ठहरे, जो एक रात के लिए वो नहीं, जो मधुबन में ठहरे और यहाँ से ही जाएंगे। उन्होंने सौगात नहीं ली, वो हाथ खड़ा करें। पार्टी में आए हुए भाई बहने, हाँ, जो भी मधुबन में ठहरे हुए है वो जब यहाँ योग पूरा होगा तो हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठेंगे। वहां पर आपको बाबा के घर से सौगात मिलेगी। जो केवल एक रात के लिए वो नहीं, उनकी सो अभी बैठे ने अभी सुन के जाए। और दूसरी बात है कि जो पार्टी के भाई बहने यहाँ ठहरे हैं, जिन्होंने सौगात नहीं ली है और यहाँ से ही जाएंगे, वो अभी योग पूरा होने के बाद हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, उनको बाबा के घर से सौगात मिलेगी। जो शांतिवन से आए हैं वो शांतिवन से ही सौगात लेंगे। और वह भाई बहने जो पांडव वन में ठहरे हैं और आज या कल जा रहे हैं वो अपने रास्ते की टोली आज प्रातः 8:30 से 10 बजे के बीच में टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे। 10 बजे के बाद टोली डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, जो डबल विदेशी भाई बहने जिन्होंने 1100 में सौगात नहीं ली है वह भी क्लास के बाद हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, उन्हें वहां सौगात मिलेगी। और योग के बाद फिर डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे। डबल विदेशी भाई बहनों को आज सारे दिन का प्रोग्राम तथा बाबा मिलन के लिए डायरेक्शंस भी सुनाए जाएंगे। अच्छा, जो एक रात के लिए नीचे से आए वो हाथ खड़ा करें, काफी है, ठीक है, वेलकम। तो आज सब नीचे जाएंगे ना बाबा की मुरली के लिए, जो सब जाएंगे बाबा की मुरली के लिए हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, क्योंकि आज तो नीचे बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है और सब मिलकर के दादियों के साथ मिलकर के नया वर्ष भी मनाएंगे, तो इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक भी है। अभी हम सभी योग में बैठते हैं। After that, all the double foreign sisters and brothers will stay back. Today's program will be announced and the directions will be given for Baba's meeting. Om Shanti.